तो आज के श्रीमद् भागवत वर्ग में सभी का स्वागत है। तो आज नवे स्कंद का नवे अध्याय का 21वां श्लोक देखेंगे। 21वां तो इसकी पार्श्वभूमि थोड़ा देख लेंगे। तो राजा, ये जो राजा था सौदर्श, इसे ये राक्षस का शरीर किस तरह मिला, राक्षस का शरीर कैसे मिला? तो एक क्या होता है, तो एक बार ये जंगल में शिकार करने जाता है, तो हिरण का शिकार करते करते ये राक्षस, ये दो भाई रहते हैं, तो उनमें से एक को मार देता है और दूसरा को छोड़ देता है। तो इसी तरह तो जो भाई रहता है राक्षस का, जिसे छोड़ दिया रहता, वो इस राजा से बदला लेने के लिए क्या करता है, तो राजा के घर में जाता है। तो घर में जाकर उसके रसोई में चले जाता है। रसोई में जाने के बाद क्या करता है, तो उस वक्त क्या रहता है, राजा के महल में घर में वशिष्ठ मुनि आए रहते हैं राजश्री, तो वो क्या करते हैं, उनको भोजन के लिए बैठे रहते हैं। उस वक्त ये जो राक्षस रहता है, जो घर रसोई में रहता है, वो क्या करता है, मांस का ऐसा बना के ऐसा परोसता है, देता है। तो ये राजा वो वशिष्ठ मुनि को परोस देता है, लेकिन वशिष्ठ अपने योग बल से वो जान लेते हैं कि ये जो भोग उनके सामने है ये मांस है, मनुष्य का मांस है। तो उससे ये देखकर वो क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने पर वो उसे शाप देते हैं कि तुमने ये जो भोग मुझे अर्पण किया है ये मनुष्य का मांस है, इसलिए तुम्हें भी राक्षस का शरीर मिलेगा। तो इससे ये राक्षस बन जाता है। तो क्या होता है, ये इस तरह महल छोड़कर ये जंगलों में भ्रमण करने लग जाता है। भ्रमण करते करते तो एक बार क्यों यह होता है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी पत्नी तो जंगल में ऐसा विहार करते रहते, तो उस वक्त ये राक्षस उस दोनों को मारने का प्रयत्न करते रहते, तो ब्राह्मण को मारने की कोशिश करते रहता है। तो उस वक्त, तो अभी इससे पता चलता आगे ये हो रहा है कि उस वक्त ब्राह्मणी ये कहती है कि आप राजा को, उन्हें ब्राह्मणी को पता रहता है कि ये जो राक्षस रहा है ये राजा है, तो इसे श्राप मिला है, इसके लिए इस वेश में है। तो वो कहती है कि आप बड़े विद्वान हैं, आपको सब ज्ञान है, आप राजश्री हैं, तो इसलिए आप इस ब्राह्मण को नहीं मार सकते। जैसे आज के श्लोक में बताया है, वो बोलती है कि ब्राह्मण ही बता रही है कि आप एक बहुत राष्ट्रीय हैं। जैसे अगर ब्राह्मण को मारने का मतलब क्या है कि गर्भ में शिशु को मारना या फिर गाय को मारना, तो उसके बराबर है। तो आज अभी तक तो इतना ही है, तो शॉर्ट में बताया। तो आगे अभी हम देखेंगे कि श्लोक के कारण ये ब्राह्मणी बता रही है, 31वें श्लोक में देखेंगे कि ब्राह्मणी ये प्रार्थना कर रही है कि उस राक्षस से, जो राजा जो राक्षस के वेश में, उसे प्रार्थना कर रही है कि आप इस तरह मत मारो इसे, क्योंकि ये एक ब्राह्मण है। जैसे मां ब्राह्मण को मारने से एक घर में शिशु को मारने के बराबर है और गाय को मारने के बराबर है, तो ये महापाप है। तो लेकिन आजकल हमने देखते हैं कि गाय, अभी घर में शिशु को मारने का मतलब कैसे है, महापाप है। लेकिन आजकल क्या देखते हैं लोग, अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के कारण क्या कर रहे हैं आजकल लोग, जानवरों के स्तर पर आ गए हैं। तो इतने उनका स्तर नीचे गिर गया है कि इंद्रिय तृप्ति करते हैं, शादी नहीं करते, कुछ नहीं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, गर्भ करते हैं, तो बाद में वो गर्भ में बच्चे को भी मार देते हैं। तो किस तरह मारते हैं, एबॉर्शन की तरह। तो ये जैसे कि ब्राह्मणी कह रही है कि ब्राह्मण को मारने के बता घर में बच्चे को मारने तरह, बच्चे को मारने के जैसे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आजकल के जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति किस तरह होगी, राक्षस की तरह हो गई। वो राक्षस ये नहीं देखता है कि किसे मारना है, कैसे मारना है, उसका असर क्या होगा। तो लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करने चले जाते हैं। तो उनकी मतलब मानसिक तो समझ सकते हैं कि वो मनुष्य के स्तर पर है ही नहीं, राक्षस के स्तर पर ही है, तो एबॉर्शन किए जाते हैं। तो बच्चे को मारने में हिचकिचाते नहीं है। ये कारण क्या है कि अनियंत्रित इंद्र तृप्ति के कारण ही ऐसा होता है। तो आगे कहते हैं उसका परिणाम क्या होगा कि उन्हें इसका पता नहीं चलता कि आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा। तो उन्हें ये सारे प्रकार के जीव वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता है कि इस दुनिया में इतने सारे जीव क्यों हैं, अलग अलग योनि में ऐसे क्यों घूमते रहते हैं। तो उन्हें ये पता करने के लिए पता रहता नहीं है, इसलिए वो इस तरह कार्य करते हैं। तो कि क्योंकि जीव जितने सारे योनि है तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग योनि में ये जीव जो घूम रहे हैं अलग अलग योनि में, ये सब पापी जीव हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी तरह पाप किया है। अगर गर्भ में बच्चे को मारे तो उससे उनका क्या नतीजा रहेगा, वो यह ना विचार कर, इसलिए भगवान क्या करते हैं ऐसे जीव को अलग अलग योनियों में डाल देते हैं। तो कभी क्या करते हैं उनको अलग अलग योनियों में कर, तो गर्भ में ही कभी कभी उन्हें मर जाते हैं, मार दिया जाता है। तो आजकल इतने गर्भपात होते हैं कि सुनने मिलता है कि क्योंकि जीव गर्भ में ही मृत्यु कर देते हैं, गर्भ में ही जीव की मृत्यु हो जाती है, जरिए वे पाप किए जाते हैं। तो जिससे ये इस तरह की उनकी जीव में अभी देखते हैं कि इतने गर्भपात होते हैं। गर्भपात क्यों होते हैं, क्योंकि जो गर्भ में जीव रहता है उसने अपने पिछले जन्म में इतने सारे पाप किए रहते हैं कि इसलिए लोग पाप किए जाते हैं कि वो वापस दूसरे माँ के जन्म लेता है, माँ के घर में जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता तो गर्भपात कर जाते लोग। तो मतलब वो जीव गर्भ के अंदर ही मारा जाता, क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसने किसी को तो मारा रहता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जो जैसा करेगा उसको ऐसे ही सजा मिलेगी। तो इसलिए इतने गर्भपात होने का कारण क्या है कि लोगों ने पिछले जन्म में ऐसे कार्य किए हैं, तो उसको ही कंटिन्यू करते गए लोग जो अभी गर्भपात कर रहे हैं, वो भी अगले जन्म में उनकी भी यही स्थिति होने वाली, वो उन्हें समझ में नहीं आ। इसके कारण ये मतलब इसका ये है कि लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, वो पूरे पूरे एकदम अज्ञान की स्थिति में, अंधकार की स्थिति में, अंधकार गहनतम अंधकार, मतलब अंधकार ही नहीं एकदम पूरे निचले स्तर का एकदम इतने अंधकार में है कि वो सोच भी नहीं पाते कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। जैसे राज्य का नियम रहता है कि अगर किसी ने गलती की या किसी की हत्या की तो राज्य क्या करता है, उसे जेल में डालता है और उसके फांसी की सजा देता है। उसी तरह भगवान के भी नियम रहते हैं, अगर कोई किसी को जीव को मारता है, चाहे वो चींटी रहे या कुछ भी रहे, तो उसे भी उसी तरह नष्ट किया जाता है। तो भगवान कैसे उसको नष्ट करते हैं, अलग अलग विपत्ति डालकर, या फिर उसको किसी माँ के घर में दे डाल देते हैं तो उसके घर में ही मृत्यु कर देते हैं। लेकिन इस तरह क्या होता है, तो घर में ही रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो कई जन्मों तक उसकी स्थिति ऐसे चलती रहती है। तो लोग ऐसे ही मृत्यु होती है, घर में होती है, लेकिन बाद में दोबारा अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के कारण फिर से वो ऐसा पाप करते हैं, लेकिन उनको फिर से दूसरे घर में जाता है। इस तरह ये कई सारे इस तरह हमने देखते हैं। लेकिन लोगों ने भी क्या किया है, सरकार ने भी उन्हें सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है कि हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल में सुविधा प्रदान कर दी उनको कि आप ऐसे अगर नियंत्रण नहीं कर सकते हॉस्पिटल में आओ, आपको इधर अबॉर्शन कर सकते, इस तरह की सरकार भी मान्यता देने लगी है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मैं पूरा सेटल हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग अच्छे स्तर पे हैं, सेटल रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कुछ ऐसे हो जाते हैं इनमें बीच में कि उनकी सब कुछ सेटल होने के बाद क्या उनको फिक्र नहीं रहती, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल चाहे वो परिवार के लिए करे या किसके लिए भी करे, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए वो कर्म को उन्हें अकेला ही भुगतना पड़ेगा। जिस तरह एक कथा आती है कि जब मृगरारी रहता है, जब नारद मृगरारी ऐसे ही लोगों को जानवरों को मारते आधा मारा छोड़ देता है, तो नारद मुनि जब ये देखते हैं ऐसी स्थिति को, आते रास्ते तो में देखते ऐसी स्थिति को, तो मृगरारी को मिलते हैं, बोलते कि तुम ऐसे जीवों की हत्या क्यों कर रहे हो, तो बोलते कि ये मेरी रोजी रोटी है, तो इससे मेरा पेट पालना पड़ता है, तो मैं क्या करूं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि इसका हश्र क्या होगा, तुम्हारे आगे क्या होगा, तो बोलता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है कि घर का पालन पोषण करना, बीवी बच्चों का ध्यान रखना, ये तो मेरा कर्तव्य है, तो मैं ये नहीं करूंगा तो करूंगा क्या मैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम ये जो पाप कर रहे हो ये तुम्हारे घर वाले परिवार वाले इसके हिस्सेदार है क्या, तो बोलता हाँ जरूर रहेंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैं उनके लिए सब करता हूं। तो नारद मुनि बोलते ठीक है जाओ अपने घर में जाओ और घर के परिवार को हर एक को पूछो कि ये जो मैं पाप कर रहा हूं, जो तुम्हें खिला रहा हूं, क्या तुम इसके हिस्सेदार हो क्या। जब मृगराधि घर में जाके पूछता है इसे, तो बोलता है, सबको ही बोलते नहीं हम इसके हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा करते हुए है कि हमें ये खिलाना, हमारा पेट पालना, हमें देखभाल करना। तो ये जब मृगराधि को पता चलता है तो वापस नारद मुनि के पास आता है। तो आसने के बाद बोलता है कि मुझे लगता था आजकल, मुझे अब तक लगता था कि मैं इनके पालन पोषण कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी जो भी पाप कर रहा हूं ये इनके लिए कर रहा हूं, लेकिन ये इन्होंने तो सीधा नहीं बोल दिया। तो इससे मृगराधि फिर वो काम धंधा, वो ऐसा वो पाप छोड़कर सही नारद मुनि के कहने पर उस रास्ते पर चल पड़ता। तो इसी तरह लोग क्या सोचते हैं कि मैं पूरा सेटल हूं, मैं जो काम करता हूं, जैसे कर्म करता हूं, ये सब मैं घर परिवार के लिए करता हूं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो कर्म करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि पैदा व्यक्ति जब जन्म लेता हो अकेले जन्म लेता है, तो मरता भी अकेला ही है, लेकिन जो कर्म करता है वो भी उसे अकेले ही भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो किसके लिए भी करे। लेकिन लोग ये समझते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा इसका, लेकिन इसके लिए वो स्वयं ही अपने कर्म के भागी रहते हैं और दूसरा कोई नहीं। ये जो जीव पाप ने किया है उसे जिम्मेदार वो स्वयं है, दूसरा कोई नहीं। ऐसे जीवों को क्या किया जाता है कि वो किसी मां के घर में जाते हैं और मारे जाते हैं। तो मारे जाते हैं तो एक बार ऐसे नहीं होता है, ये जो गर्भपात करते हैं तो उनके साथ ये एक जैसा नहीं होता है, ये एक बार नहीं है कि हाँ इसने एक बार ऐसा कार्य किया है तो एक बार उसे मर जाता, वो उसे सजा मिलेगी छोड़ दें, ये अंत कालों तक चलते रहता है उसके साथ। क्योंकि भगवान का एक बार सरकार, आजकल सरकार क्या कहती है कि अगर किसी का खून किया तो उसे फांसी की सजा ना देकर उसकी फांसी की सजा माफ कर दी जाती है, कुछ समय माफ की जाती है। लेकिन भगवान का नियम ऐसे नहीं रहता है। भगवान का नियम कैसे है कि आपने वो जो किया है तो उसकी आपको सजा इतनी मिलेगी कि आपको कई योनियां, कई जन्मों तक, कितने समय तक नरकों में आपको इसे भुगतना पड़ेगा, कि इतना घर में उसके माँ के घर में उसके इतनी बार जन्म लेना पड़ता है, कि इतनी योनियों में उसे ऐसे जन्म लेना पड़ता है कि उसे बाहर की दुनिया भाई रोशनी भी नसीब नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे ये लोगों ने इंद्र तृप्ति करते हैं। तो ऐसे तब लेकिन इन तो ये सबको कैसे रोका जा सकता है कि जब तक हम ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर देते। लेकिन लोग ये अज्ञान के अंधकार में रहने के कारण ये कार्य करते हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहता, किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता, वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं रहता है। तो इसी तरह ये सब रोकने के लिए क्या एक रास्ता है कि जब तक भगवान के रास्ते बताए रास्ते पे नहीं चल जाते या भगवान को संतुष्ट नहीं करते। वैदिक जीवन का मतलब क्या है कि शारीरिक आसक्तियों से मुक्त होना, यह वैदिक जीवन है। लेकिन लोग आजकल उस वैदिक जीवन को, शास्त्र को पालन न करने के कारण तो ऐसे कार्यों में वो डूबते रहते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये गर्भपात का घर में जीव को, वो जीव बोलते कि ये घर में जो जीव है वो जीव है ही नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ फर्क ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी देश हैं इस दुनिया में कि ऐसे एक देश है एक दुनिया में कि जहां गर्भ को खाया जाता है, जैसे कि उसको सबसे महंगा मांस इस दुनिया में बोले तो जो गर्भ से निकलता हुआ शिशु है, जो जिसे गर्भपात किया जाता है, जो रहता है सबसे महंगा मांस है, वो एक देश है, मैं वो नाम नहीं लेंगे उसका, नहीं थाईलैंड नहीं है, दूसरा और एक है उस जगह पे, वो भी रहेगा लेकिन दूसरा और एक देश है उसके साथ। तो उस जगह पे ये इसका मांस खाया जाता है, सबसे महंगा मांस। तो आप सोचिए कहां बकरे बकरी मच्छी मटन मच्छी छोड़कर सबसे, और वो लोग ऐसे भी खाते हैं कि उसका टेस्ट लेकर खाते हैं। तो ये सब का कारण क्या है लोग, ये जो जीव अनियंत्रित इंद्र तृप्ति करते हैं, ये सब पाप ऐसे लोगों को लगता है जो गर्भ हॉस्पिटल में जाके गर्भपात करते हैं, इंजेक्शन लेके या गोली खाके गर्भपात कर लेते हैं। ये लोग पाप, ये जो खाने वाले को उतना पाप नहीं लगता है जो गर्भपात करने वाले को, क्योंकि खाते क्यों है, क्योंकि वो ऐसे कार्य करते हैं जिनके कारण इनको ये खाने मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कहते कि ये जीव ऐसे हो ही नहीं सकते, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो ये तथाकथित लोग कौन है, ये जो साइंटिस्ट लोग, इनका मानना कैसे है कि ये कुछ रसायन से, केमिकल से जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ऐसे लोगों के कारण ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ऐसे लोगों के कारण ये ऐसे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि केमिकल के कारण ये सब जीव की उत्पत्ति है, तो इसके मारना, ये गर्भपात करना, तो इसमें क्या फर्क, क्या फायदा होता है। लेकिन वो ये ऐसे लोग साइंटिस्ट लोग ये ना भगवान को मानते हैं, ना भगवान की प्रकृति को मानते हैं, ना जीव को समझते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग, इनका परिणाम क्या होता है कि वे कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, साइंस ही सब कुछ है और ऐसा दूसरा कुछ नहीं। जो इसके ऊपर एक कथा आती है कि न्यूटन और उसका मित्र, न्यूटन जो भगवान पर विश्वास रखते थे और उनका मित्र जो पूरा नास्तिक था, तो एक बार न्यूटन समझाने की कोशिश करता है कि ये जो जितने सारे ग्रह है, ये गैलेक्सी जो भी है, ये भगवान के द्वारा रचिया किए हुए हैं। लेकिन ये इसका मित्र बोलता है मित्र बोलता है ये नहीं, ये तो एक बिग बैंग थ्योरी है। जैसे कि साइंटिस्ट बोले कि ये बड़े धमाके से, बड़ा धमाका हुआ, फिर बाद में उससे ये ग्रह एक एक टुकड़े से बन के ग्रह बन गए और ये तैरने लगे, तो न्यूटन बोलते कि ये ऐसी बात नहीं है, ये भगवान इसके पीछे है, इसको नियंत्रण करने वाले, ये ग्रह अपने कक्ष में सही तरह से एकदम घूमते रहते हैं। तो वो मानने को तैयार नहीं मित्र, तो बोलते नहीं, ये तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम साइंटिस्ट हो के भी तुम ऐसे बातें करते हो, तुम मूर्खों जैसे बातें करो। तो न्यूटन सोचता कि इसे समझाने का तरीका एक, तो न्यूटन क्या करता है, एक बार रात के समय पे ये पूरा जो पूरा ग्रह मंडल है, जो अलग अलग नक्षत्र ऐसे घूमते रहे, वो ऐसा एक मॉडल बनाकर वो टेबल पे रख देता। तो जब ही आता है तो उसका मित्र जब ही उससे न्यूटन से मिलने आता है, तो उस वक्त वो बोलता है, ये टेबल में उस मॉडल को देखकर बोलता है कि ये कितना सुंदर, ये किसने बनाया है। तो न्यूटन बोलता है, ये किसने बनाया, नहीं ऐसे सामान पड़ा हुआ था, तो पड़े पड़े तो रात को पड़ा हुआ था ऐसे, तो धीरे धीरे मिलकर अपने वो अपना ऐसे बन के खड़ा हुआ, सुबह मैंने जब भी देखा तो ये ऐसे बना हुआ था। तो उन मित्र बोलता है, तुम मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये कैसे बन सकता है, अपने सब कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई चीज पड़ी हुई है या ऐसे किससे वो बन के कैसे बन सकती है। तो बोला, उसी तरह अगर ये छोटी सी वस्तु अगर ये ऐसे बन के अपने आप बन नहीं सकती, तो इतने सारे ग्रह जो घूम रहे हैं वो अपने आप कैसे घूम सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी किसका तो हाथ होगा। तो तब उसके मित्र को समझ में आता कि हाँ, कि ये न्यूटन जो कह रहा है ये सही है, क्योंकि हम अगर ये छोटी वस्तु अपने आप नहीं बन सकती, ये मॉडल अपने आप नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा जो प्लैनेटरी सिस्टम है तो ये अपने आप कैसे बन सकता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो साइंटिस्ट है, जो तथाकथित साइंटिस्ट है, जो ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये अपने आप हुआ है, एक बिग बैंग थ्योरी के कारण ये विस्फोट हुआ, उसके कारण ये सब कुछ होने लगा। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कितने घनतम अंधकार में जी रहे हैं। तो लोगों की ऐसी ऐसे लोगों की ऐसी मानसिक स्थिति है कि क्या है कि इससे पता नहीं चलता कि ये कब नास्तिक बन जाते हैं और भगवान और भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार करते। तो ऐसे लोगों को समझना समझाते हैं, तो ऐसे लोग समझते हैं कि धार्मिकता, तो ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे तथाकथित लोग समझते हैं कि धार्मिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है, भगवान की लीलाएं, भगवान ये सब मनोकाल्पनिक है, इससे कुछ लेना देना नहीं, ये सब घन कथा है, मतलब माइथोलॉजी एक, ये मतलब एक काल्पनिक कथा है। जैसे कुछ समय बोल रहे थे कि जैसे अयोध्या नाम की चीज नहीं है, राम है ही नहीं, तो ऐसे लोग कुछ कहते हैं। तो ऐसे ये सब ऐसे लोगों के कारण ही होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोगों को भगवान की कथा और भगवान की लीलाओं, राधा कृष्ण के बारे में किस तरह बताया जा सकता है, क्योंकि इन्हें समझ में आएगा नहीं कि सिर्फ भगवान की लीला, अगर इनके लोगों को अगर भगवान की लीलाएं और भगवान की कथा के बारे बताएंगे, तो ऐसे लोगों रासलीला के बारे में सोचकर गलत अर्थ निकालकर तो उसके बारे में ऐसे ही सोचेंगे। तो भगवान की लीलाएं और भगवान को समझने के लिए सिर्फ शुद्ध भक्ति है, जो पूरी तरह अपने हृदय से शुद्ध और भगवान के पूरी तरह शरणागत है, ऐसे लोग ही भगवान की लीलाओं को समझ सकते। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कहते थे, ऐसे ऐसे तथा साइंटिस्ट ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोगों को, तो इसलिए उनको प्रभुपाद रास्कल बोल के कहते थे, क्योंकि ये मूर्ख लोग। तो अगर इसे अगर किसी को भी भगवान और भगवान की लीला को समझना है तो उसे इस घन अंधकार से बाहर निकलना होगा। पहले अगर भगवान को लीला और भगवान को समझने के पहले हमें क्या समझना होगा कि भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, भगवान की प्रकृति क्या है, जीव क्या है और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। जब तक हम ये चीजों को समझ नहीं लेते हैं, जब तक हम ये प्रकृति को समझ नहीं लेते, जब तक जीव क्या है उसको समझ नहीं लेते, तब तक हम भगवान और भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा है, तो इस इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, सभी को कृष्ण प्रेम का वितरण कर। लेकिन और उच्च, ये सबसे उच्च दर्जे का लक्ष्य है। इस्कॉन की उद्देश्य यही है कि सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम देना, और ये सबसे जीवन का सबसे उच्च ध्येय है, उच्च लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि उस प्रेम को पाने के लिए, इस प्रेम को पाने के लिए हमें पहले दो चीजों का कम करना पड़ेगा। इस दुनिया में दो चीजें कम करने पड़ेगी। वो क्या है दो चीजें, पहले है कि ऐसे जो नास्तिक साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति केमिकल से होती है, कुछ रसायनों को मिला दे तो जीव की उत्पत्ति हो सकती, या हम ये जीव की उत्पत्ति करेंगे, ये ऐसे कहते हैं, तो इन लोगों को कम करना। और दूसरा है ये जो ढोंगी साधु, जो तथाकथित ढोंगी साधु जो अपने आप को भगवान कहते हैं और भगवान की लीलाओं को बोलते कि मैं ही भगवान हूं, सब कोई भगवान हो सकते हैं, ऐसे लोगों को इस दुनिया से कम करना, उनकी मानसिकता को नष्ट करना ऐसे लोगों को। तो सुप्रभात कहते हैं कि ऐसी दुनिया जो लोग गलत रास्ते पे चल रही है, दुनिया गलत रास्ते पे जा रही है, जाने का कारण क्या है, क्योंकि लोग ऐसे लोग जो रहते हैं जिनको कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसे लोग ऐसे साइंटिस्ट और ऐसे साधुओं के पीछे जाते हैं, और ऐसे लोग ये साधु लोग ये साइंटिस्ट लोग इनको रास्ता भटका देते हैं, भ्रमित कर देते हैं और उनके रास्तों पे चलने पे जाते हैं, क्योंकि लोगों को शास्त्र से कुछ लेने देना नहीं रहता, उसके पर ज्ञान नहीं रहता कुछ। तो ऐसे साधु से ढोंगी साधु को अपने आप जो भगवान मानते हैं और भगवान की श्रेष्ठता को नकारते हैं, भगवान की श्रेष्ठता को नकारते हैं, ऐसे साधु संघ को त्याग करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हमें दूर करना चाहिए। तो इसलिए आज तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों का संग करने से लोगों की क्या अवस्था हो। तो आजकल जो हम देखते हैं लोग इतने नास्तिक बन रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं, ये यही कारण है कि लोग क्या करते हैं, सही व्यक्ति के पास जाते नहीं है और गलत व्यक्ति के जाने के पास उनसे वो जो सीखते हैं, जो उनसे जानते हैं, वो ऐसे लोगों को पास जाने के कारण भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। जब तक इन दोनों को रोका नहीं जाता तब तक हम भ्रमित अवस्था में जाते रहेंगे और कृष्ण प्रेम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सभी लोगों को एक, तो प्रभुपाद ने इसके लिए जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो पहले शिक्षक शिक्षा पढ़ाई करते थे, तो जब प्रभुपाद से मिले, तो प्रभुपाद से मिलने के बाद तो प्रभुपाद ने उन्हें शिष्य बनाया, उन्हें भक्ति में लाया, क्योंकि वो भक्ति में आसानी से आ गए भक्ति स्वरूप महाराज दामोदर महाराज। तो आसानी से क्यों आ गए, क्योंकि महाराज के बैकग्राउंड जो था वो वैष्णव परिवार से थे, इसीलिए वो आसानी से भक्ति में आ गए। तो भक्ति में साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइंटिस्ट का स्टडी कर रहे थे तो आ गए। तो आने के बाद तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया जो बताया, इसी तरह तुम इन साइंटिस्टों के बीच में तुम रहते हो, उनके बीच में जाओ, तुम कॉन्फ्रेंस करो, जो करो, तुम्हें जो चीज की जरूरत रहेगी तुम लो, और उन्हें जाके इन साइंटिस्टों को बताओ कि भगवान का अस्तित्व है। तो तब तक तुम कुछ करो मत, सिर्फ तुम्हारा एक ही सेवा रहेगी कि तुम साइंटिस्ट को कॉन्फ्रेंस लो और उन्हें सही ज्ञान दो। तो इस तरह भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने ये कार्य उनको सौंपा प्रभुपाद। तो सब ऐसे करने से तो भगवान भी ऐसे लोगों को, सभी लोगों को, जैसे हम जैसे जीवों को एक मौका मिला है, तो भगवान की सभी मौको सभी लोगों को मौका देते दिए जाता है। तो भौतिक दुनिया में कृष्ण के लिए कार्य करो, तो मौका क्या देते भगवान कि तुम लोग आओ मेरे भक्तों का संग करो, उस संग से तुम सही चीज जानो और सही चीज जानने के बाद तुम अपना जीवन सफल करो। तो इसे भगवान एक ऐसा मौका देते हैं लोगों को, लेकिन क्या वे लेकिन लोग वैसे करेंगे नहीं, ऐसे मौकों का फायदा नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनकी उन्होंने उनके पूरे जीवन में उन्होंने जो कुछ सुना है, जिन लोगों को रास्ते पे चले हैं, उन लोगों के जीवन में ही उनको पालन करते रहते हैं। जिस तरह अभी पीछे जो लोग आते हैं, अगर उन्हें हम बताते हैं ऐसे ऐसे नियम पालन करो, ये सब करो, तो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं 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 हमने ये इनका ग्रहण किया, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे, लोग पालन नहीं करते उसका। क्यों नहीं पालन करते? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही वो सब कुछ भरा हुआ है जो उनको ये असली चीज पाने में मुश्किल होती है। इसलिए तो ऐसे लोग क्या होते हैं, तो ऐसे लोग बार बार जन्म लेते हैं, मां के घर में जाते हैं, फिर से उनकी घर में मृत्यु होती है। तो इसी तरह वो लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसी काम इच्छाओं के कारण अवैध कामाचरण सबसे बड़ा पाप। प्रभुपाद कहते हैं कि काम वासना बुरी नहीं है, लेकिन आप नियंत्रित नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों को, तो आप विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह करने के बाद आप काम इच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग समझते नहीं, क्योंकि ये रजोगुण के होने के कारण, रजोगुण से युक्त होने के कारण वे जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म नहीं कई जन्मों तक ये ऐसे कार्य करते। इसलिए हमें इन लोगों के प्रति मतलब द्वेष या ग्लानी नहीं होती, इनके प्रति हमें दुख होता है कि ऐसे लोगों के प्रति जो जिन्हें सही ज्ञान देने के कारण भी, सही रास्ते पे चलने के कारण भी कहते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं, तो फिर भी वो सही रास्ते पे जाने के कारण, न जाने के कारण, तो इस तरह वो जन्म जन्मांतर तक ये दुखों को भोगते रहते हैं। तो ये एक ही रास्ता है, एक ही, अगर उसने इन जन्म चक्र मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है कि कृष्ण भावना के रास्ते पर चलो, कृष्ण भावना अमृत के रास्ते पर चलो, तो तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो। इससे बस यही तुम्हारे जीवन से बचा सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए इस कौन की स्थापना की। इसी तरह मनुष्य परिपूर्ण हो सकता है। अगर हम कृष्ण भावना के रास्ते पे चलते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, तो हम खुद अपने आप से सोच सकते हैं कि जब हम भक्ति में आने के पहले तो हम क्या सोचते थे, हमारे विचार कैसे थे, जो आज हमें पता है, उस वक्त हमें उससे पहले पता नहीं था, लेकिन हमें भक्तों का संग मिला तो जिससे हम भक्ति में आने के बाद हमें कुछ ज्ञान हो गया उसके बारे में, जिसके कारण हमने हमारा जीवन सफल किया। उसी तरह अगर ये लोग भी, अगर इस तरह इन्हें मौका मिलता है, अगर इस मौके का ही फायदा उठाते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं, जिससे उनकी और कृष्ण भावना में सिखाया जाता है कि किस तरह इंद्रियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, किस तरह हमें भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, तो इस तरह हमें ये कृष्ण भावना में सिखाया जाता है। इसी तरह अगर आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है तो इसे कृष्ण भावना को स्वीकार करने से, प्रभुपाद के दिए नियमों को अगर पालन हम पालने पूरी तरह पालन करने के प्रयत्न करते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न या कुछ पूछना है बताना तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय।